निर्माण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। संगम युग पर एक लक्ष्य जो हमने रखा है वो है दिव्य ज्योतिर्मयी काया, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। तो सभी फिर से इसी दिव्य ज्योतिर्मयी काया का अनुभव करने के लिए स्थिर बैठेंगे। कुछ समय के लिए आंखें बंद, संपूर्ण चेतना को देह के भव्य भाल पर विराजमान आत्मा में केंद्रित करेंगे। शरीर में हो रहे स्पंदन, शरीर में हो रही संवेदनाएं, एक सूक्ष्म दृष्टि सिर के सिरे से पांव तक, सूक्ष्म स्पंदन जो देह में हो रहे हैं, वो चेतना का दर्पण है। संपूर्ण मस्तिष्क दिव्य ज्योति से भर गया है, मुझात्मा से दिव्य प्रकाश धीरे धीरे सारे शरीर में फैल रहा है। दायां हाथ छाती, बाया हाथ, पेट, दाया पैर, बाया पैर, संपूर्ण शरीर आलोक से प्रकाशित, शरीर के सारे विकार, सारी उत्तेजनाएं समाप्त हो गई है। शरीर सभी रोगों से मुक्त है, थकान से मुक्त है, भूख और प्यास की उत्तेजनाओं से पार है। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें सारे शरीर में फैल रही है। ऊर्जा ही ऊर्जा, स्पंदन ही स्पंदन, ऊपर से नीचे तक बार बार मन को घुमाएंगे शरीर में, कोई हिस्सा मूर्छित न रहे। बाह्य तापमान के प्रभाव से मुक्त, मृत्यु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। एक एक कोशिका में जीवन स्पंदित हो रहा है, प्राण ऊर्जा सारे शरीर में दौड़ रही है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। जैसे मैं आत्मा पवित्र, मेरी ये देह भी पवित्र। परम धाम से शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझसे एक एक अंग में जा रही है। मेरी ये देह भी परम पवित्र हो चुकी है। ओम शांति। तो कल हमने चर्चा की थी पवित्र शरीर की, प्योर बॉडी की। तो उसके 8 आयाम हैं। सबसे पहला देखा था राजयोग, पवित्रता के सागर से प्यूरिटी की किरणें लेना और वो सारी किरणें शरीर में फैलाना, विशेषतः उस अंग में फैलाना जिसमें दर्द है, जिसमें कोई पीड़ा है, जो रोगी है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। क्योंकि यदि शरीर में दर्द है तो जिस तरह शरीर में जब छोटा सा भी दर्द होता है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उंगली में दर्द है पर पूरी एक्सरसाइज रुक जाती है, व्यायाम करने में कठिनाई आती है। शरीर में थोड़ा सा भी कोई दर्द, कोई भी पीड़ा, किसी भी तरह का रोग, जैसे चेतना में जो पावर है वो कम हो जाती है। इसलिए सबसे पहली विधि है इस शरीर को पवित्र बनाने की, राजयोग। ऊपर से किरणें लेना, सारे शरीर में किरणें फैलाना। कौन सी किरणें? प्यूरिटी की किरणें। ऑरा बहुत सारे प्रकार के ऑरा है, परंतु वाइट ऑरा सर्वश्रेष्ठ ऑरा है। वाइट किरणें लेना, वाइट किरणें पूरे शरीर में फैलाना। लोगों ने अलग अलग रंग दिए, ज्ञान इंडिगो, पावर्स रेड, इस तरह से, और ज्ञान अलग 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 नाम दिए, पर जरूरी नहीं है कि हम उसी रंग का वो सोचे। किसी भी रंग का कोई भी शक्ति ले सकते ऊपर से और पूरे शरीर में उसको फैलानी है। क्योंकि ये जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, ये 5 तत्व और वो 5 तत्व एक ही है, जैसे पिंडेशु ब्रह्मांडे। तो ये सबसे पहली विधि। दूसरी विधि हमने देखी थी डाइट। हमारा जो पेट है इसको कहा जाता है सेकंड ब्रेन, गट्स आर सेकंड ब्रेन। ये दूसरा ब्रेन है यहां। तो जितना आहार हल्का हल्का होता जाएगा, हमें एक नई चीज पता चलेगी फूड और इमोशंस के बारे में, ये खाया तो कौन से इमोशंस जनरेट होते, ये खाया तो कौन सी शरीर में संवेदनाएं जनरेट होती है। बहुत तीखा खाया, बहुत तीखा खाया, उसके बाद योग में बैठने के बाद किस तरह आत्मा उड़ सकती है ऊपर। गरिष्ठ भोजन खाया, एकदम गरिष्ठ, कई सारे प्रकार, उसके बाद में योग में। क्यों अमृत वेला योग अच्छा होता है अधिकांश लोगों का? क्योंकि कोई कोई ऐसे भी कहते हैं हमको सुबह नींद आती है, शाम का योग हमारा अच्छा होता है, क्योंकि सुबह पेट खाली होता है, इसलिए आत्मा बहुत तेजी से ऊपर उड़ सकती है, शाम को वो नहीं हो पाता, सुबह होता है। तो आहार को कल हमने विस्तार से इसकी चर्चा की थी, कम 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 कम, धीरे 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 हल्का हल्का करते जाना है, धरती तत्व से आकाश तत्व की ओर जाना है। आकाश तत्व अर्थात उपवास, धरती तत्व अर्थात अनाज, भारी जो है उससे हल्के की तरफ जाना है, लाइटनिंग अप द डाइट। तीसरा बताया था फास्टिंग, वो अपने रीति से इसके बारे में समझना है, इसको क्या है, ये जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, किसी ने कहा इसलिए करे वो तो बिल्कुल भी नहीं, हमें अपने शरीर को समझना है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते जाना है इसके बारे में, रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करो, ये खाया क्या प्रभाव हुआ, नहीं खाया क्या प्रभाव हुआ, योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इमोशंस पर क्या प्रभाव पड़ा, भावनाएं कैसी रही, इसकी स्टडी करते रहना है खुद ही। सब कुछ हमारे हाथ में, हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो फास्टिंग में बहुत सारी बातें देखी थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग, जूस फास्टिंग, एक है रसाहार, एक है लिक्विड्स, इन दोनों में अंतर है। रसाहार किसको कहा जाता है, रसाहार किसको कहेंगे, रसाहार अर्थात प्रेस करो और जिसका जूस निकल जाए वो है रसाहार, जैसे संतरा, मौसम्बी, अनार, प्रेस किया और जूस निकला। तो फल तीन प्रकार के, एक तो है ये जूस वाले, ये हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट, दूसरे नंबर है पल्प वाले, गुद्देदार, जैसे चीकू, आम, पपीता, ये लोअर कैटेगरी है, इसको भी पपीते का भी जूस बनाया जा सकता है, पर फिर वो रसाहार नहीं रहा, वो दूसरा है। रसाहार मतलब दबाया एप्पल, ये सब पल्पी फ्रूट है, रसाहार मतलब दबाया और जूस निकला, वो है रसाहार, वो हाईएस्ट है, उसको कहते हैं रसाहार, जिसमें कुछ भी दूसरा कुछ जा ही नहीं, शरीर को कुछ काम ही नहीं, बस वो एब्जॉर्ब करना काम है, डाइजेशन का तो बहुत कम काम है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करो, लिक्विड को फिर गैस में, यही शरीर करते रहता है, वो सब डाइजेशन एक प्रोसेस ऐसी है कि एनर्जी लगती है उसमें, भयंकर एनर्जी चाहिए, इसलिए जितना ज़्यादा खाओ उतना योग कम, उतना भारीपन ज़्यादा, क्योंकि शरीर किसमें व्यस्त है, उसको पचाने में, इतना सारा डाल दिया रात को 10 बजे भोजन में, सुबह उठने की रोज 2 बजे उठते उस दिन इच्छा नहीं होगी, 2:20 में उठेंगे, क्योंकि आदत तो लंबे समय की है, पर थोड़ा तो लेट हो गई। जिसको बहुत ही ज़्यादा पक्की आदत है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु योग में फर्क ज़रूर पड़ेगा, आत्मा उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि स्थूल आत्मा को खींचता है। फूड इज द ग्रेटेस्ट मटेरियल बॉन्डेज, शरीर और आत्मा, आत्मा को सबसे ज़्यादा शरीर में जो बांधे रखा है वो है भोजन, फूड ग्रेटेस्ट। तो दूसरा हमने देखा था फास्टिंग, तो बीच बीच में जो कभी नहीं किया है जिन्होंने, वो 4 घंटे 2 घंटे से चालू करो, अभी खाया अगले 2 घंटे कुछ नहीं खाओ, इतना तो करो, क्योंकि लोगों को खाऊं खाऊं की आदत है, अभी ये खाएं, अभी टोली खाऊं, अभी वो खाऊं, अभी ढूंढते ही रहते हैं कहाँ से क्या मिल जाए, क्योंकि क्यों जाती है बुद्धि, क्योंकि मन ऊपर से वो सुख नहीं मिल पा रहा है। आज कहा ना बाबा ने, रसगुल्ले मुरली में है, सभी रस उसमें है, उसमें सब रस नहीं मिल पाते तो नीचे रस ढूंढते, कहाँ रस ढूंढते हैं, 2-3 चीज़ों में ही बुद्धि जाती है, एक तो काम में, काम विकार, दूसरा भोजन, तीसरा एंटरटेनमेंट, ये तीनों की तरफ बुद्धि जा रही है, अर्थात उसमें जितना रस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जो खाली जगह है वो भोजन से भर रहे है, और वो भरने के बाद में भी अभरे ही है, खाने के बाद में भूख मिटती थोड़ी ना है, थोड़े देर के लिए खाली, थोड़े देर के लिए पेट भरता है, फिर थोड़ा खाली होगा फिर डालो, इसलिए ये जरूरी है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना है, 2 घंटे से चालू करो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 घंटे तक पहुँचो, फिर 8, फिर 12, फिर 12 के बाद 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, धीरे 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 धीरे, और एक एक जंप लेते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे, जब तक ग्रिप ना आ जाए 12 घंटे पर, 14 घंटे पर नहीं जाओ, जब ग्रिप आ जाए कि अभी खाली, अभी अगले 12 घंटे ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं, और वो सहज स्वभाव हो जाए, इच्छा ही नहीं अगले 12 घंटे, ये जब ग्रिप आ जाए 3 महीनों में, 3 महीना इसी को मेंटेन करके रखो, एकदम जंप नहीं करो, उसने कर दिया मैं भी करता हूँ, चक्कर खा के गिरोगे सीधा हॉस्पिटल, स्टार्वेशन, डिहाइड्रेशन, डेथ, क्योंकि ये अगर छोड़ा तो उसकी जगह कुछ दूसरा चाहिए, सब्स्टिट्यूट भोजन, सब्स्टिट्यूट भोजन अगर नहीं दिया तो डिहाइड्रेशन होगा, सब्स्टिट्यूट भोजन बहुत सूक्ष्म है, एक तो मेडिटेशन है, शिव बाबा से ही योग करते करते सोचो कि वहां से सारी किरणें वहां यहां आ रही है, सारे रस, सारे टेस्ट, वो रसों का सागर है, उसमें सारे टेस्ट है, वो स्वीट का पहाड़ है तो वो नमक का भी सागर है, उधर नमक चाहिए ना उसी से नमक आ रहा है, इधर नमकीन का स्वाद उसी से प्राप्त हो रहा है, खट्टा मीठा का स्वाद वहीं से प्राप्त हो रहा है, सारे फलों का स्वाद, रोटी का स्वाद वहीं से आ रहा है, चटपटा वहीं से आ रहा है, वो चटपटा का भी सागर है, ये योग के प्रयोग है कि उसी से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, वो डिवाइन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मेडिकल में होता है टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन, जब पेशेंट मुंह से खा नहीं सकता तो यहाँ से न्यूट्रिशन देते, बड़ी बैग होती है सफ़ेद कलर की जिसमें सब कुछ होता है, वो 24 घंटे चालू रहता है क्योंकि पेशेंट यहाँ से नहीं खा सकते, उसको कहते हैं टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन, हमारा है टोटल प्राणिक न्यूट्रिशन या टोटल डिवाइन न्यूट्रिशन, शिव बाबा ही सब न्यूट्रिशन का सोर्स है, उसी की किरणों सूरज पर पड़ रही है, वो सूरज का भी बाप है, और सूरज तो सभी सृष्टि का बाप है, जो कुछ पक रहा है जमीन पर किससे पक रहा है, सूरज से, सूरज ही ना हो तो क्या होगा, सारे फल सब्जियां कुछ पकेगा, तो सारे सब्जियों का सारा सोर्स सन है, इसके लिए जो लोग सन गेजिंग करते हैं एटलीस्ट 9 महीने जो कहा, धीरे 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 भूख कम कम होने जाती है, फिर इच्छा ही नहीं होती है कुछ भी, क्योंकि फल को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, सूरज से, हमने सूरज से डायरेक्ट ले रही है, तो सूरज प्राइमरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है, पकाने के बाद तो वो टर्शरी बन जाता है, सीधा उसी से किरणें ले रही, और सूरज से भी ऊपर कौन है, ये महासूरज, इसके लिए योग सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी है, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी की ही खुराक खाओ तो वो खुराक की आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है, इसलिए नहीं कि लोग व्यक्ति उपवास कर रहा है, इच्छा ही नहीं है या आवश्यकता ही नहीं है, और शरीर बहुत अच्छे से चल रहा है, और कई लोग जबरदस्ती उपवास करते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, फिर ये जबरदस्ती का काम ही नहीं है, और संसार में तो जिस तरह से उपवास करते हो पूछो मत, वो तो जस्ट वैरायटी है, तो वो उपवास किसी काम का नहीं है, वैसा उपवास किसी काम का नहीं है, थोड़े बहुत फायदा होगा शरीर को, ज़्यादा नहीं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, फिर हमने देखा था एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, मूवमेंट, और हर मूवमेंट, जहाँ मूवमेंट होगी वहाँ एनर्जी फ्लो होगी, अगर इसको मूवमेंट नहीं करेंगे तो एनर्जी फ्लो नहीं होगी, वहाँ पर स्टैग्नेशन होगा, सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा मूर्छित रहेगी, इसलिए एक्सरसाइज में क्या क्या देखा था, सबसे पहला तो कोई भी एक्सरसाइज, एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वार्म अप एक्सरसाइजेस, उसके बाद में कार्डियो, दौड़ना, वो उससे एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है शरीर में, उसके बाद में देखा था वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, उसमें भी बहुत पावर आती है, उसके बाद में और क्या देखा था, योगासन, सूर्य नमस्कार, उसके बाद में और क्या देखा था, थाईची और शिगोंग, ये सबसे लास्ट जो है ये थाईची और शिगोंग, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट एनर्जी ले रहे हैं, और उसमें भी अपना थाईची करना है, उसमें कोई स्टेप्स नहीं, कुछ भी नहीं, अपने को जैसे रविनेश भाई करके दिखाओ अपनी थाईची, कुछ भी मूवमेंट, वो अभी अभी 2 मिनट में सब लोग करेंगे यहाँ, कोई भी, हाँ हाँ करेंगे, पहले आप करो, कैसी भी जैसे मर्जी हो वैसे, कोई भी उसमें ये नहीं कि ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, कुछ भी, पर करना है, इसमें ये समझ के कि ये पूरी प्रकृति क्या है, ऊर्जा है, और इस ऊर्जा, ये ऊर्जा आ रही है, पूरी प्रकृति पूरा संसार ऊर्जा का समुंदर है, सारी ऊर्जा मैं अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। जहाँ पर मूव करना है अपने मन से, आंखें बंद करके करो, आंखें खोल के करो, मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है, ऊर्जा ही ऊर्जा, पूरे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा। सभी खड़े हो जाएंगे और हाथों की बहुत स्लो मूवमेंट करेंगे, जैसे चाहो वैसे, जहां घुमाना है वैसे, कैसे भी, किसी को देखना नहीं है, सेल्फ स्टाइल, अपनी मूवमेंट खुद करनी, किधर भी, धीरे धीरे सोचो प्रकृति की सारी ऊर्जा, सारी प्राण शक्ति मेरे अंदर समा रही है। नीचे झुकेंगे, ऊपर झुकेंगे, नीचे जाएंगे, घुटनों की तरफ, पैरों की तरफ घूमना है थोड़ा हॉल में। सोचो शिव बाबा की ऊर्जा ऊपर से मेरे अंदर आ रही है। सभी बैठ जाएंगे। तो ये हुआ थाई ची। थाई ची अर्थात सारे ही शरीर का मूवमेंट, मतलब होल बॉडी स्ट्रेचिंग, और शिगोंग अर्थात एक पार्ट, जैसे एक्सरसाइज करते हैं जिसमें सारी एक्सरसाइज की, और कभी कभी केवल चेस्ट की एक्सरसाइज की, वो है थाई ची, शिगोंग, समझाने के लिए। तो ये था खुद का अपना, कोई इसमें ये नहीं है कि यही करना है वही करना है, जैसी मर्जी चाहे वैसे, परंतु इस भाव से करना है कि मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है। इसको आप सूक्ष्म वतन से जोड़ दो, अपने आप को परम धाम से जोड़ दो, सारी ऊर्जा मेरे अंदर समा रही है। तो ये जब ऊर्जा ले ली, तब भोजन से ऊर्जा लेने की आवश्यकता अपने आप कम पड़ रही है, अपने आप। जब मेडिटेशन से ही सारा ऊर्जा मिल रही है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फूड है ये सारे। तो ये हमने चार चीज़ें कल देखी थी, आज का पाँचवा ब्रेथ वॉक, आज का है ब्रेथ वर्क, श्वास। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है प्राणायाम, सबसे पहले है प्राणायाम, जो कई लोग जानते भी है, करते भी है, जो नहीं करते वो सीखे और करे। उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, खाली नाम गिना रहे, भस्त्रिका, कपालभाति, जो नहीं करते हैं कोई इंस्ट्रक्टर होगा, योगा टीचर, इंस्ट्रक्टर, योगासन क्लासेस हो गए आसपास, वो ज्वाइन करके वहाँ से सीखे। क्योंकि हम लोगों के लिए क्या चाहिए, सारा फोकस हमारा फूड पर है, ये भूल रहे हम कि एयर कितनी इम्पॉर्टेंट है। प्योर एयर बहुत आवश्यक है। जब तक प्योर एयर शरीर में नहीं है, हमको चाहिए क्या? प्योर एयर। हम भोजन के बिना रह सकते हैं, कुछ मांस भी रह सकते, पानी के बिना भी रख सकते, पर हवा के बिना नहीं रह सकते। तो हमारी जो हवा है वो बहुत ज़रूरी है। ओजोन, ऑक्सीजन, निगेटिव आयन्स, आयनाइज्ड पार्टिकल्स, ये सब हमको एयर से मिलते हैं। और ये हाई मात्रा में कहाँ रहते हैं? माउंटेंस पे, थोड़ा हायर प्लेन्स में। और माउंट की हवा कितनी शुद्ध है, AQI यहाँ का 50 से भी कम है। आप दिल्ली में जाओ तो वहाँ का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, टाइप करो, आज का ही टाइप करो इंटरनेट पे, मूवमेंट अबू AQI, ऐसे टाइप करो, देखो कितना आता है। सबसे बेस्ट AQI 50 या 50 से नीचे। इसके ऊपर जो भी देश ये है, इतना पोल्यूशन है। दिल्ली में खाने की कमी है, इतना खाने का है, इतने फल, इतने फ्रूट्स, हर प्रकार का फ्रूट वहाँ मिलता है, पर लोग स्वस्थ है क्या? क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर है। तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, और वो सुबह सुबह फ्रेश एयर हमको अपने अंदर, कितनी आज की 36, इट्स माउंट अबू का, दिल्ली का टाइप करो कितना ज़्यादा आता है। देखो जैसे AQI बढ़ते जाता है, एयर पोल्यूटेड होती जाती है। हम भोजन का तो दिन रात सोचते हैं, कोविड कोविड कोविड, लोग पूछते हैं कोरोना में क्या खाना चाहिए क्या, कोई ये नहीं पूछता कि हवा कौन सी ले। 300 के अबव चल रहा है दिल्ली का AQI, मुंबई का देखो, बेंगलुरु का देखो, सबका इतना हाई AQI। इसलिए हमको फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। और फ्रेश एयर कहाँ से आएगी? इसलिए इतना सब अच्छा खाने के बाद में भी लोग बीमार पड़ते, यहाँ तक कि जिम में जाने वाले जिम ट्रेनर कोरोना उठा के ले गए उनको। फिटनेस ट्रेनर्स, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन, क्यों? क्योंकि फोकस केवल फूड पर है, फूड ही सब कुछ नहीं है, एयर इज मोर इम्पॉर्टेंट। वाइले ब्रुक्स तो कहता है कि एयर इज द ओनली थिंग वी नीड फॉर लिविंग, एयर के अलावा, ब्रेथ ऑफ लाइफ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एयर। और भारत के योगी महात्मा तो कहते हवा भी नहीं, वो तो उसके भी ऊपर है। वो तो कहते वो सर्वोत्तम है। एक तो उपवास है कि जिसमें धीरे धीरे करते करते व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, केवल श्वास पर जीता है, ब्रिदारियन। पर एक लेवल उसके भी ऊपर का है, वो कहते हैं श्वास की भी जरूरत नहीं है। योगी लोग जमीन के नीचे, एक योगी था 6 मास तक उसको बनारस में जमीन के नीचे पूरा ढक दिया, वहां तो हवा भी नहीं कुछ नहीं, 6 मास के बाद निकाला उसको बाहर, वो एकदम बढ़िया था, सबको हेलो कर रहा था, सारी भीड़ थी, भीड़ से हटा के लोग उसको लेके गए, फिर उसकी जांचें हुई, सब नॉर्मल, 6 महीना जमीन के अंदर उग गया ही होगा। तो ब्रीदिंग में सबसे पहला बताया प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, जो आपको सारे एटलीस्ट 6-7-8 प्राणायाम तो रोज करने हैं, बाह्य प्राणायाम, उज्जयिनी प्राणायाम, ओमकार, ये सब बहुत पावर है इनमें। भ्रमरी बहुत पावर है, वो साउंड में एनर्जी है, ओमकार भ्रमरी इसमें बहुत पावर है। तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए सब जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि इनसे आत्मा पवित्र हो जाएगी या सतो प्रधान बन जाएंगे, पर शरीर ही यदि साथ नहीं दे रहा है, शरीर बीमार है, तो अध्यात्म फेल है। कोई अध्यात्म हो नहीं सकता बिना स्वस्थ शरीर के। योग करने के लिए जरूरी है एक अच्छा साधन कि जिसमें कोई बीमारी नहीं हो। कल 8 बातें बताई थी कंचन, ये दिव्य ज्योतिर्मयी काया की, कौन कौन सी? एक पवित्र शरीर कौन सा है? पहला, जिसमें विकारों की कोई उत्तेजना ही नहीं है, एक नेचुरली रूप से वो जो एक्साइटमेंट से विकारों की वो चली गई है। एक दूसरा, कोई बीमारी नहीं है शरीर में। तीसरा, कोई दर्द नहीं है कहीं पर भी शरीर में, कोई कहीं पर भी कोई दर्द नहीं, एकदम स्वस्थ का अनुभव हो रहा है। अगला, भूख प्यास से परे है, उसको कोई ऐसा, जो प्योर इम्प्योर बॉडी होगी उसको बार बार भूख लगती रहती है, क्योंकि अंदर कीड़े हैं, टॉक्सिन्स है, मल है, फंसा है वहाँ पर, जो कुछ हमने खाया है इतने दिनों से सब फंसा हुआ है वहाँ पर, कुछ भी निकला नहीं है, वो निकलेगा आगे की जो प्रोसेस बताएंगे उससे। हमको कहाँ पता ही नहीं कि इतना अंदर कितना कचरा है, ऐसा नहीं कि जो पतला और जो गोरा दिखता है उसमें मल नहीं है, सब में फंसे हुए है, और जो बहुत सुंदर है उसमें नहीं है, और जो पतला है उसमें नहीं है, और जो छोटा है उसमें नहीं है, सब में अंदर केवल कचरा ही भरा हुआ है। इतना कचरा भरा हुआ है
कि इसीलिए तो बीमारी होती रहती है, कुछ ना कुछ सर्दी होगी, कभी खांसी होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी ये दवाई, कभी वो दवाई, कभी क्रोसिन लो, कभी एंटीबायोटिक लो, कभी भर्ती हो जाओ, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि शरीर बीमारियों का घर बन चुका है। तो पवित्र शरीर अर्थात कोई बीमारी नहीं, कोई थकान नहीं, कोई कमजोरी नहीं, किसी अंग में कोई मूर्छा ही नहीं है, सब जगह में ऊर्जा ही ऊर्जा का अनुभव है। दिन रात ऐसा लगता है क्या करूं, अब सेवा भी इसलिए कर रहे कि ऊर्जा इतनी ज्यादा है, कहीं तो यूज करनी है। इसीलिए अगला पवित्र शरीर अर्थात तापमान का कोई प्रभाव, बहुत माइनस डिग्री हो या ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ नहीं, इधर जैसे के वैसे ही, कोई प्रभाव नहीं उसका। अगला ओल्ड एज के कोई लक्षण ही नहीं है, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे से कैसा होगा। अरे जितना जितना बूढ़ा होते जाओगे ऊर्जा बढ़नी चाहिए तुम्हारी, वो काले बाल सफ़ेद बाल के कोई सवाल नहीं है, वो प्रकृति के नियम है। जरूरी नहीं है कि काले सफ़ेद काले हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगला बुढ़ापे, स्लीप, कंप्लीट कंट्रोल ओवर स्लीप, स्लीप का पूरा नियंत्रण हमारे, ये पवित्र शरीर है, प्योर बॉडी मीन्स स्थिरता है उसमें, और कोई पेन नहीं, और निद्रक हो गया, और डेथलेसनेस की अवस्था है, लॉन्जिविटी, हाँ, और जितने लोगों ने लॉन्जिविटी पर किताबें लिखी, 100 वर्ष कैसे जिए, वो 50 साल के पहले ही चले गए ऊपर। जितने लोगों ने किताबें लिखी ऐसी, वो आज है नहीं, क्योंकि उनको राज ही पता नहीं था, क्योंकि सारा फोकस ये खाना वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, खाली वोट। एयर के बारे में किसी ने लिखा ही नहीं, एयर को इंक्लूड ही नहीं किया उसमें। एक वैज्ञानिक ने लिखा है, यदि न्यूयॉर्क से ऊपर फ्लाइट से देखा जाए तो एक क्लाउड, डार्क क्लाउड दिखता है, इतना पोल्यूशन है। पूरा लंग्स का ऑटोप्सी करो तो उसमें काला ही काला सूट, SWOT, पूरा ब्लैक सूट से भरा हुआ है, टार से भरे हुए लंग्स लोगों के, फेफड़े पहले से ही भरे हुए, फिर भी बॉडी में एक लॉ है, लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट, कितना भी शरीर को आप गलत दो वो एडजस्ट करते जाता है, दारू पिलाओ उसको 100 साल तक, फिर भी वो धीरे धीरे वो टूटता नहीं है, वो एडजस्ट करता है उसके साथ, इतनी पावर है इस शरीर में। इसके लिए लोग क्या क्या खाते हैं और फिर भी देखो ठीक रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, ऐसे किसी जानवर को नहीं छोड़ा आदमी ने, सबको खाते हैं। टोक्यो में कभी एक प्राणी संग्रहालय था, जू, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के ढेर सारे प्राणी थे, बिच्छू, सांप, जैसे वो गांधीनगर में कौन सा है वो आपने देखा होगा, नेचर्स पार्क देखा है किसी ने गांधीनगर का, यहीं पे अहमदाबाद के पास, इतने सारे, इतने बड़े बड़े अजगर है वहाँ पर, इतने सारे अजगर, सबको जेल में रखा हुआ, मतलब कैद खाने में रखा हुआ है। तो एक उधर था टोक्यो में, इतने अलग अलग, कहीं शेर बंद है, कहीं है, और लास्ट में एक पिंजरा है, उसमें केवल आईना है, और उसमें लिखा था ऐसे एरो करके, मोस्ट डेंजरस एनिमल, आप जाके खड़े रहो, खुद को देखोगे। ये है मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये जो थे ना अभी तक के, ये डेंजरस नहीं थे, यू आर द मोस्ट डेंजरस ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट, केवल आईने रख दिए वहां ताकि आप खड़े रहो कि कौन है कौन है। लोग ये होते, इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता है क्या, चीता देख लिया, अजगर देख लिया, खड़े रहो खुद दिखोगे, ये है सबसे ज्यादा डेंजरस, खतरनाक प्राणी, किसी को नहीं छोड़ा इसने, सबको खाया है, फिर भी द्वापर युग से खाते खाते एडजस्ट करते करते बॉडी में इतनी पावर है कि इतना सब खाने, गलत डाइट लेने के बाद, सबसे पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहने के बाद में भी आदमी जिंदा है, इतनी शक्ति है इस शरीर में, एडजस्ट करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, टूटता नहीं है, पर दिशा बदलती है उसकी धीरे धीरे, अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, सोचते अरे भाई हम तो कुछ नहीं करते, हम तो 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक, हम तो यहाँ का खाते हैं, सब कुछ अच्छा है हमारा, फिर भी कैंसर कैसे आ गया अचानक, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना दारू, कुछ भी नहीं, फिर भी, क्योंकि कहीं से तो जमा हो रहा है ना सारा, तो एयर पोल्यूटेड है। तो प्राणायाम, दूसरा है बॉक्स ब्रीदिंग, इसकी चर्चा लास्ट भट्टी में हमने की थी, 1, 2, 3, 4 श्वास लेना, 1, 2, 3, 4 अंदर रोक के रखना, फिर 1, 2, 3, 4 बाहर छोड़ना, फिर बाहर रोक के रखना, और इसको योग का प्रयोग बनाना, इसको करना परम धाम में, जैसे शिव बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है, फिर इसको यहाँ रोक दिया, यहाँ ये आत्मा पवित्रता की किरणें आई, 1, 2, 3, 4, फिर ब्रेन में ही रोक दिया उसको, वहीं घूम रही है वो किरणें, फिर छोड़ते समय सोचो कि ये किरणें पूरे शरीर में जा रही है, 1, 2, 3, 4, फिर शरीर में ही रोक देना, शरीर में घूम रही है वो, जहाँ यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ गई, फिर उसको अंदर लेना, फिर नेक्स्ट एक साइकिल। तो ये बॉक्स ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, कई दिन भर में कई बार किया जा सकता है, परमधाम में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसको 4 से चालू करना, 10 और जितना बढ़ा सके बढ़ाना। अगला है एक ब्रेथ अवेयरनेस, केवल देखना श्वास को, आनापान सती जो बुद्ध ने सिखाई, जिसमें बैठ के ना प्राणायाम करना कुछ ना करना, बस केवल श्वास को आ रहा है जा रहा है आ रहा है, कोई मंत्र नहीं जोड़ना, कोई 1 2 3 4 नहीं जोड़ना, कुछ नहीं जोड़ना। फिर पता चलता है मन कितना अस्थिर है। 1 घंटा तक ये, इसके सेशंस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, विपश्यना सेशंस। बस देखना श्वास आ रहा श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है श्वास जा रहा है, ब्रेथ अवेयरनेस। ये किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, ये जैसे एक्सरसाइज वैसे वैसे ही है, कोई भी कर सकता है इसको। तो ये 3 है। ब्रीदिंग, एयर बहुत बहुत जरूरी है, प्योर एयर। इसके लिए ऐसे स्थानों से बचना है जहां बहुत भीड़ भाड़ है, जहां क्राउड है, ये सारी चीजें, जहां शुद्ध हवा है। और शुद्ध हवा सबसे ज्यादा कब मिलती है? सुबह 2 और 6 के बीच, सुबह 2 और 6 के बीच, ये अमृत वेले का जो समय है ना, प्योर एयर है। यहां पर कोई ट्रैफिक नहीं है, जहां कोई मनुष्यों की भीड़ नहीं है, प्योर एयर है। और बड़े शहरों में तो लोग उठते 6, 7, 8 बजे, वो भी प्योर एयर है, वो भी। यहाँ हमको जितनी प्योर एयर मिलती, संसार में इतनी प्योर एयर नहीं है। तो शुद्ध हवा, ये सीक्रेट है प्योर शरीर का। जो पहाड़ों पर रहते हो कितना लंबा जीते, प्योर एयर होती है वहां पर। या पहले के लोग ज्यादा जीते थे, अभी नहीं जीते, क्यों? इम्प्योर एयर है अभी। तो ब्रीदिंग। 5वां है योगिक क्रियाएं, शरीर को प्योर बनाने के लिए क्या है? योगिक क्रिया है। ये जानते होंगे सब लोग और करते भी होंगे कुछ कुछ लोग। क्या क्या है इसमें? 6 प्रकार के हैं ना ये योगिक क्रिया है। एक तो होता है नेति, क्या करते हैं उसमें? जल नेति, इधर से पानी डालते हैं इधर से निकालते हैं। जल नेति, सूत्र नेति, ये सब करते हैं। रबड़ नेति, तो पहला है नेति। दूसरा है वमन, वमन धौती, कुंजल क्रिया। बहुत रात में इतना खा लिया कि सुबह एसिडिटी हो रही है, तो क्या करते हैं? नमक का पानी पीना है, ऐसे बैठते हैं नीचे और उंगली डाल के पूरा निकालना। हाँ, पर इसका एक है, कई लोगों का विरोध है इन योगिक क्रियाओं के बारे में। वो कहते तुम गलत खाते हो, फिर ये करो। पर क्या करे, लोग कहते शादी में गए तो खाना ही पड़ा, तो करो फिर। अब ये मतलब पहले गलत डालो फिर निकालो, ये उसकी टेक्निक्स है। जो डालेगा ही नहीं, जिसके शरीर में म्यूकस ही नहीं, उसके लिए ये व्यर्थ है सब, उसके लिए कुछ काम नहीं है। पर जो ये सब कर रहे, बार बार खांसी होती रहती है, बार बार सर्दी होती रहती है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, बार बार छाती में भरी भरी रहती है, म्यूकस, खांसी, कफ रहता है, वो सब म्यूकस वाला प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो करो अब ये। और क्या दूसरी मेथड क्या है? तो ये हो गया। फिर उसके बाद में है भस्ती, एनिमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी में से। ये बहुत सारी क्रियाएं हैं यहाँ पर, कपालभाति, अग्निसार, ये सब चीज़ें इसमें आती है, पर हम फोकस करेंगे आज एनिमा पर। जिनको इस यात्रा पर आगे बढ़ना है, प्राणिक यात्रा पर, या प्योर शरीर को प्राप्त करने के लिए कंपल्सरी, या जो कुक्ड फूड ही खाते हैं, उनके लिए एनिमा कंपल्सरी है। एनिमा करना चालू करो, तब पता चलेगा कि शरीर में कितनी गंदगी रुकी हुई है। एटलीस्ट 2 बार दिन में, मॉर्निंग इवनिंग। एनिमा पॉट आता है 1500 ml, उसमें पानी भरना है। पानी कौन सा लेना है? टैप वाटर। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। परंतु हर एक आज से एक पॉट ले लो, एनिमा पॉट, एक हील, उसको वहाँ ऊपर टंगाना है, उसमें पानी भरना है, उसमें नोजल होता है, ऑयल लगा के एनल रीजन गुदा द्वार में डाल के पूरा पानी अंदर जाने दो, जितना रोक सके रोको, और फिर बैठ जाओ, सारी गंदगी निकलती जाएगी। सुबह एक बार करो, शाम को एक बार करो, क्योंकि खाली पेट करो बहुत ही अच्छा है। परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, जितनी बार करो उतना अच्छा ही है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांति है कि ये करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट कम से कम धीरे धीरे आपको शरीर ही बताएगा कि ये कब नहीं करना है। तो एटलीस्ट 1 month के लिए सुबह शाम 2x a day, फिर 1 महीने के बाद उसको 1x a day कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे शरीर बोलेगा तब, क्योंकि तब तक हम बहुत सारा परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उससे ही करने से पता चलेगा रात जो खाया वो सब निकल रहा है। ये था वो रात का, ये तंदूरी, ये सब निकल गया। और शरीर से गंदगी निकलने के बाद में लोग कहते हैं इससे कमजोरी आएगी, अरे गंदगी निकलने के बाद में कमजोरी आएगी कि पावर आएगी? पावर आएगी। ये करना जब चालू, और जब उपवास करते तो ये कंपल्सरी समझ लो इसको, उपवास की अवस्था में, और उसे वैराग भी आएगा थोड़ा सा। भोजन की अभी फिर से तुरंत खाने की इच्छा नहीं होगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एनिमा बट प्लेन वाटर एनिमा इज मस्ट. सभी को, चाहे कोई बीमार हो, बीमार है तो बहुत ही कंपलसरी है, जो फास्टिंग कर रहा है उसके लिए तो है ही है, जो स्वस्थ है जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको करना है. किस लिए? फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए एनिमा इज मस्ट. एनिमा किस लिए? फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए. क्योंकि जो कुछ हम खा रहे हैं इस समय सारा टॉक्सिन से भरा हुआ है. हम जो कुछ खा रहे हैं वो सारा अनाज, वो रोग कारक है. जो कुछ हमारे शरीर में जा रहा है एक रीति से, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा तेल है, बहुत सारा नमक, मिर्च, मसाले है, उसमें अनाज है वो भी पका हुआ है. ये सब अगर हम खा रहे और चाहते फिर भी स्वस्थ रहे तो फिर एनिमा करो, और चाहते आध्यात्मिक उन्नति हो तो फिर एनिमा करते करते फिर धीरे धीरे ये याद आएगा, समझ में आएगा कि ये भोजन अब मेरा नहीं है, इसको मैं हमेशा के लिए, तब तक नहीं छोड़ना उसको जब तक अंदर से वैराग ना आ जाए उसके लिए, उसको तब तक चालू रखो. खुद का अनुभव बताएगा कि इसको मुझे आज से छोड़ना है, ये अब मैं नहीं खा सकता, ये मेरे लिए नहीं है. क्योंकि जब भी मैं ये खाता हूँ मेरे साथ ऐसा होता है, नींद आती है, अमृत वेला डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फूड और इमोशंस बहुत गहरा कनेक्शन है, जो फूड वो इमोशंस सीधा बनते हैं. तो एनिमा बहुत सिंपल टेक्निक है, हर एक को सीखना है. उसकी किस किस पोजीशन में करें वो सब कुछ दिया हुआ है इंटरनेट पे, उससे जितनी ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है हासिल करिए इसके बारे में, और एनिमा चालू करना है, चाहे स्वस्थ है या नहीं है. कोई बीमारी है तो ये तो सबसे बेस्ट है, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कहते हैं हमको कब्जी है ही नहीं, बराबर पेट साफ होता है, एनिमा करके देखो फिर पता चलेगा कि ये है पेट साफ होना. अभी तक जो हो रहा था और जिसमें तृप्त हो रहे थे ना, वो कुछ भी नहीं है, इतना कुछ भरा हुआ है. और पहले एक हफ्ता तो ऐसा निकलेगा हैरान हो जाओगे देखकर, ये क्या है, ये मैं क्या खा रहा था, डांबर ही डांबर. ये क्या है, इतना कहां से निकल रहा है. ये एक बच्ची ने अपना अनुभव बताया, एनिमा उसने चालू किया ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की कोई कन्या, तो 15 दिन के बाद वो बर्गर बाहर निकला जो 15 दिन पहले खाया था. वो अभी तक वही था. ये तुम्हारे खाए हुए पिस्ता, बर्गर, तंदूरी, ये रोटी, ये जो बड़ी आते हैं ना, बहुत बड़ा कॉलम है, एक ट्यूब है पूरा, उसमें स्ट्रेच हो सकता है, उसमें 71 ऐसे पॉइंट्स है, चिपका रहता है. रोटी, रोटी में ग्लूटेन है, ग्लूटेन में चिपकाव होता है गेहूं में. वो रोटी कैसी है देखा, कितना चिपकी हुई, वो सब हाथों में चिपका हुआ है, मैदा तो उससे भी ज़्यादा, ये सब चिपका हुआ है. जो कुछ हमने खाया, इतनी रोटियां खाई, तीन तीन बार अनाज खाया हुआ है, सब अंदर चिपका हुआ है. और फिर अचानक से बीमारी नहीं आती, अचानक से किसी को कोविड नहीं हो जाता है, अचानक से किसी को कैंसर नहीं हो जाता है, अचानक से कोई टाइफाइड, मलेरिया, फीवर, ये सब नहीं हो जाता है, क्योंकि मल ही इतना अंदर भरा हुआ है. जिसका शरीर ही अंदर से स्वच्छ है उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. चाहे ये जिन्होंने इतने इतने चार चार मास्क लगाए और हम अरे दूर 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 कोविड कोविड भागो यहाँ से, बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे, टच मी नॉट, ऐसे वाले भी बाद में कोविड खुद पॉजिटिव हो गए और खुद सीरियस भी हो गए. पॉजिटिव तो छोड़ो, सीरियस हो गए, जो बिल्कुल ऐसे अत्पृष्ट जैसा व्यवहार करते थे, हट हटो हटो उधर से जाओ तू, डोंट टच मी, ये 10-10 बार सैनिटाइजर यूज करते थे, मास्क लगाते थे, ये सब जरूरी है, पर उससे ये बाह्य शुद्धि है, ये बाह्य प्रोटेक्शन है. अंदर का प्रोटेक्शन जब तक नहीं तब तक बीमारी होते रहेगी. हाँ कुछ कह रहे थे. हाँ, एनिमा से जितनी बीमारियां है धीरे धीरे सारी बीमारी हट, क्योंकि एनिमा का लक्ष्य क्या है, अंदर का मल बाहर निकालना. जैसे ही आंत शुद्ध हो जाएगी, इंटेस्टाइन, अपने आप हमको एक नया ऊर्जा, एक न्यू वर्ल्ड में हम पहुंच जाएंगे. फरिश्ता स्थिति क्या है तब समझ में आएगा, ये है फरिश्ता स्थिति. इसको कहते हैं हल्कापन. अभी तक तो जो खा रहे हैं सब कुछ वहां फंसा हुआ है, कितना निकल रहा है, पेट साफ तो हो रहा है, दो तीन कहते ना हमको, हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ होता है, हमको कोई जरूरत नहीं. सबको जरूरत है, क्योंकि हम इस युग में अभी जी रहे हैं, इसीलिए जरूरत है. मे बी 50 साल पहले जरूरत नहीं थी, 100 साल पहले जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब इतना पोल्यूशन नहीं था, तब जो प्लांट्स और हाँ वो खाने में जो था वो बहुत पावरफुल था उस समय, तब उतनी जरूरत नहीं. पर अब हम जिस युग में जी रहे, जिस सभ्यता में जी रहे, जिस टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे, जो हमारे प्लेट में आ रहा है वो सब रिफाइंड, प्रोसेस्ड, सब उसमें इतना सब डाला हुआ है, वो एक एक चीज़ का अगर देखो कहाँ से कैसे पहुँचा, खाएंगे नहीं उसको, कैसे वो शक्कर पहुँची है, कैसे वो अनाज पहुँचा है, इट्स डेंजरस. इसलिए ये क्रिया, इसलिए योगिक क्रिया जरूरी है. हाँ, पर इस मार्ग में बहुत आगे जो बढ़ चुका है उसके लिए योगिक क्रिया सब रोगिक क्रिया है, उसको जरूरत ही नहीं है सब चीज़ों की। उसको वो कहते हैं, कई एक भाई ऐसा है, वो कहता है वो तो कितने सालों से इस यात्रा में, वो कहते हैं मुझे ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर में म्यूकस है ही नहीं कुछ, म्यूकस लेस डाइट, कोई शरीर में गंदगी नहीं है, कोई टॉक्सिन्स ही नहीं है, कोई मल ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कचरा ही नहीं है, तो मैं ये सब क्यों करूं? और राइट है, उनको ज़रूरत नहीं, पर शुरुआत में इस सब की ज़रूरत बहुत है। तो एनिमा चालू करो, थोड़ा वेट लॉस भी होगा इससे अच्छा है, इतना गंदगी निकल जाएगी ना तो बहुत हल्का लगेगा, और ये मत समझो इसकी आदत पड़ जाएगी, आदत का कोई बात ही नहीं है, गंदगी अंदर है, दिवाली में कचरा साफ करते ना, करो साफ सफाई, दिवाली आ रही है दिवाली में ये एनिमा चालू कर दो, डेली चालू करना है इसको, देखो क्या फर्क क्या होता है, तब पता चलेगा, और फिर रियल वैराग आएगा कोई कोई चीज़ों से, जो हम इतना चाव से खाते हैं वो छूट जाएगी फिर, और वो छूटने के बाद ऐसा लगेगा अच्छा हो गया वो छूट गई, वो तो रोगी बना रही थी मुझे, भारी कर रही थी मेरे, मेरे योग में ही परिवर्तन दिखेगा सबसे पहली चीज़, जो हल्कापन, एनिमा लो और फिर अमृत शाम का योग करो, नुमा शाम का योग, सी क्या अवस्था आती है, एकदम हल्कापन, कुछ है ही नहीं है तो तब मंगा के रखो, इतने छोटे छोटे आते हैं वो एनिमा पॉट, प्लास्टिक के, स्टील के सबसे बेस्ट है, और उसको अपना अपना पर्सनल यूज़ करो, उसमें अगर बहुत सारे प्रश्न सामने आएंगे मन के सामने, वो धीरे धीरे फिर जैसे इस यात्रा पे जाओगे प्रश्नों के उत्तर अपने आप निकलते जाएंगे। तो शरीर शुद्धि के लिए क्या चाहिए? एनिमा मस्ट, और कई बार दो तीन बार कर सकते हैं, सुबह सुबह एक बार किया फिर वापस एक ही सेटिंग में दो तीन, जब तक सारा निकल रहा है निकलने दो उसको, निकलने से कभी कमजोरी नहीं होगी, शक्ति आएगी, ठीक है? तो दूसरी मेथड क्या बताई? एनिमा, और दो और बाकी है वो कर लेंगे। तो टोटल 8 विधियां है, सबसे पहली बताई योग, दूसरा डाइट को कम हल्का हल्का करते जाना है, तीसरा उपवास, चौथा एक्सरसाइज, जो नहीं करते वो आज से ही एक्सरसाइज चालू कर दो, एक्सरसाइज ऐसी कि 24 घंटे में एक बार पसीना आ जाए पूरा, ऐसा पसीने से नहाना है, दो बार तो वो पानी से और एक बार ये पसीने से, हाँ ठंडी के मौसम में ऐसा पसीना आ जाए। सभी कुमार पुशअप्स करो एटलीस्ट 150 पर डे 24 घंटे में, सुबह कर लो 15 करो, फिर रुको, फिर 15 करो, फिर रुको, फिर 30 करो, फिर दोपहर शाम को कर लो, ये टारगेट रखो कि हमको वर्कआउट करना है, वर्कआउट ऐसा करना है कि जिससे पसीना आए। हमको क्या अधिकार है 3 बार भोजन करने का? यहाँ हमारी सेवा कितनी है? हाँ कोई हार्ड वर्क कर रहा है, मजदूर कैसे हार्ड वर्क करते हैं, वो अगर हमारी सेवा तो ही अधिकार है 3 बार भोजन करने का, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। ताकत का काम करो तो अधिकार है फिर, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर कम कम करते जाओ उसको, नहीं तो ये भी बोझ है हमारे ऊपर। कितनी सेवा है? 4 घंटा 5 घंटा? हिम्मत वाली मेहनत वाली सेवा कहाँ है? तो उसके बाद हमने देखा था एक्सरसाइज के बाद ये थाई ची प्राण ये कर सकते हैं, जैसे अभी ओन थाई ची अपने ही, उसके बाद बॉक्स ये प्राणायाम, प्राण पर काम करना है, कुछ नहीं आता है तो बस लंबी सांस लेना और छोड़ना, इतना ही करो, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है हमको प्राणायाम वगैरह नहीं समझ, लंबी सांस लेना लंबी सांस छोड़ना, प्योर एनर्जी जाने दो, प्योर ब्रेथ, ऑक्सीजन, ओजोन, आयनाइज्ड आयन्स एंड निगेटिव आयंस, ये सब अंदर जाने दो। और उसके बाद योगिक क्रिया, योगिक क्रिया ढेर सारी है किताबों में, ढेर सारी किताबें हैं, वीडियोज़ है, सब देख सकते हैं, सबसे बेस्ट है एनिमा, और ये सब खुद करके देखना है एनिमा, तब पता चलेगा ये क्या है। और स्नान में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट वर्थ है, हम फटाफट स्नान करके भागो भागो योग बाबा के कमरे में, ये नहीं, ये भी एक यज्ञ है स्नान, शरीर की शुद्धि भी एक यज्ञ है। तो एनिमा, कल 2 और विधियाँ देखेंगे, फिर ये शरीर का पुराण पूरा करेंगे। ओम शांति।